अभिमन्यु वसुधा के बिछाए जाल में फंस चुका था। इशिका और अभिमन्यु को एक साथ रखने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर ली थी। वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रुकने वाली थी। उन्होंने जैसे तैसे करके अभिमन्यु को अपने पास हॉस्पिटल आने को मजबूर कर दिया था। वसुधा ने अभिमन्यु को अपने साथ इशिका को लाने के लिए भी कहा था। वसुधा से बात हो जाने के बाद अभिमन्यु मन ही मन इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे इशिका के साथ रहना पड़ेगा। अभिमन्यु ने अपना सिर पकड़कर कहा, काश मैं आपको बता पाता दादी कि आपकी बहू सिर्फ पेपर्स में ही आपकी बहू है, ना कि रियल लाइफ में। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड भी है, मुझे उससे दूर रहना होगा। उसे हमारी शादी के बारे में कभी पता नहीं चलता अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं गई होती। अभिमन्यु इशिका की नकली शादी का सच नहीं जानता था, इसलिए उसे यही लगता था कि इशिका का बॉयफ्रेंड है। अभिमन्यु के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने इशिका को मैसेज किया, दादी अभी तक हॉस्पिटल में हैं, उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिला है, वो चाहती हैं कि हम साथ में हॉस्पिटल आएं। तुम पार्किंग एरिया में आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अभिमन्यु का मैसेज मिला उस वक्त इशिका टैक्सी में थी। जब वसुधा का कॉल आया था तब वो समझ गई थी कि जरूर वो उसे अभिमन्यु के साथ आने के लिए कहेगी। अभिमन्यु से बचने के लिए इशिका जल्दी से टैक्सी में निकल गई। इशिका ने जवाब में लिखा, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं अभी टैक्सी में हूँ, हॉस्पिटल में मिलते हैं मिस्टर राजवंश। अभिमन्यु का रिप्लाई देखकर अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तो खुश होना चाहिए कि वो मेरे साथ नहीं आ रही, फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? दोपहर को भी उसने लंच साथ में नहीं किया, तब भी मैं इरिटेट हो गया था। पता नहीं ये लड़की आखिर इतनी अजीब क्यों है, जब सामने वाला हेल्प कर रहा है तो ले क्यों नहीं लेती है हेल्प। अभिमन्यु ने चिढ़ते हुए अपना ब्लेजर उठाया और वहां से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ इशिका बिल्लू के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो मन ही मन बोली, डोंट वरी मिस्टर राजवंश, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। जानती हूँ कि आपने ये शादी घर वालों के प्रेशर में आकर की थी। ना जाने हम कैसे एक साथ जुड़ गए, पर एक दिन जरूर अलग हो जाएंगे। इशिका ने खुद को तुरंत ही संभाला और वसुधा के प्राइवेट रूम में जाने लगी। वो अभिमन्यु के साथ किसी तरह के इमोशंस नहीं जोड़ना चाहती थी। नक्श के साथ उसने दिल से दोस्ती निभाई थी, लेकिन उसके बदलने के बाद वो उसे काफी हर्ट कर रहा था। जब इशिका लिफ्ट से बाहर निकली तब उसका ध्यान सीधे वसुधा के कमरे की तरफ था। वहीं पास से राधिका और आयशा चेकअप करवाकर बाहर निकली थी। राधिका ने एक पल उसको देखा और फिर हिचकिचाते हुए आयशा से पूछा, वो इशिका है ना, वो यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है, वो ठीक है ना? इशिका के बचपन में भी राधिका उसकी काफी परवाह किया करती थी और अपनी आदत के मुताबिक इशिका को हॉस्पिटल में देखकर वो परेशान हो गई थी। इशिका का नाम सुनते ही आयशा को गुस्सा आ गया। वो मन ही मन बोली, ये जरूर यहाँ बड़ी दादी से मिलने आई होगी, अजीब है वो औरत भी, इसे अपने कमरे में आने दे रही है, जबकि कुछ देर पहले जब मैं उनके कमरे में गई थी तब उन्होंने मुझे अंदर एंटर तक नहीं करने दिया था। मुझे छोड़ो, वो तो अपने किसी फैमिली मेंबर तक को आने नहीं दे रही है। आयशा को चुप देखकर राधिका ने फिर से पूछा, क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? हाँ, वो इशिका ही थी, वो यहाँ मिसेज राजवंश से मिलने के लिए गई है, वो काफी अच्छे दिल की है तो अपना टाइम निकालकर मिसेज राजवंश के लिए यहाँ आई है। आयशा ने अपनी आदत के मुताबिक अच्छा बनने की कोशिश की। उनके साथ में राधिका की केयरटेकर भी थी, वो पिछले कई सालों से राधिका की देखभाल कर रही थी और उम्र में उससे लगभग 7-8 साल बड़ी थी। उनका नाम श्रुति देशमुख था। साथ रहते हुए राधिका और उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। आयशा की बात सुनकर श्रुति ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, मजाक कर रही हो क्या, वो और अच्छे दिल की, इतने सालों में मैंने कभी उसे राधिका से मिलने तो आते नहीं देखा। आयशा भी श्रुति की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और उसे आंटी कहकर बुलाती थी। आयशा कुछ जवाब देती उससे पहले राधिका बीच में बोल पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है, पता है ना, उसने काफी कम उम्र में घर छोड़ दिया था और अपने दम पर अपनी स्टडीज की और आगे बढ़ी। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, श्रुति ने सिर हिलाकर कहा। एक तो उसकी माँ मालविका हमारे घर में जमी हुई है, मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जैसी भी है लेकिन एक बात सच कहती है कि इशिका बाहर रहते हुए बदतमीज हो गई है। वो चाहती तो अपनी माँ से अलग हो सकती थी, लेकिन उसे देखकर ही लगता है कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया फिर भी कभी मिलने नहीं आई वो आपसे, श्रुति ने इशिका को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। आयशा ने मासूम बनते हुए कहा, मिस्टर अभिमन्यु राजवंश ने इशिका को जॉब दी है, शायद उन्हीं के एहसान का बदला चुकाने के लिए इशिका यहाँ पर आई होगी। एहसान तो राधिका ने भी उस पर किया था, उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया तो वो खाना देती थी, कपड़े भिजवाती थी, बीमार होने पर दवाइयाँ देती थी, उससे मिलने तक जाती थी, कभी उस एहसान का बदला चुकाने तो नहीं आई वो लड़की, श्रुति ने जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर राधिका इरिटेट होने लगी थी। उसने सख्त लहजे में कहा, अब बस करो, यहाँ हॉस्पिटल में बहस करनी जरूरी है क्या? राधिका की रोकने के बाद में भी आयशा शांत नहीं हुई,
उसने कहा, सबका नेचर अलग अलग होता है श्रुति आंटी, आपको डॉक्टर मर्चेंट याद है, बचपन में उन्हें मॉम ने पैसे दिए थे ताकि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके, लेकिन वो इशिका की तरह नहीं निकले, उन्होंने मॉम की बहुत मदद की, मॉम की कंपनी को पेटेंट की जरूरत थी तो उन्होंने उसमें उनकी हेल्प की, बदले में उन्होंने एक पैसा तक नहीं लिया। कुछ लोग एहसानों का बदला चुकाना जानते हैं और कुछ लोग इशिका की तरह एहसान फरामोश होते हैं। हाँ, डॉक्टर मर्चेंट काफी अलग है, तुम उसे इशिका से कंपेयर कर भी कैसे सकती हो, श्रुति ने सिर हिलाकर कहा। डॉक्टर मर्चेंट का नाम याद आते ही आयशा को याद आया कि नक्श ने डॉक्टर मर्चेंट से मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा था। उसने तुरंत राधिका से कहा, मैं डॉक्टर मर्चेंट से पर्सनली मिलना चाहती हूँ मॉम, आपने कहा था कि हम डिनर पर साथ चलेंगे लेकिन काफी दिन हो गए, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने प्लान पोस्टपोन कर दिया था, मैं उन्हें फिर से मैसेज करती हूँ और फिर हम साथ में चलेंगे, राधिका ने मुस्कुराते हुए आयशा के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा। वो सब बात करते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे जबकि इशिका वसुधा के रूम में थी, वो खिड़की से उन्हें ही देख रही थी। राधिका सिंघानिया बीमारी की वजह से काफी दुबली पतली हो गई थी लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी काफी चार्मिंग थी, वो दिखने में भी खूबसूरत थी। उन्हें देखकर इशिका की आंखें हल्की नम होने लगी, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इशिका ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया। वो मन ही मन बोली, मिसेस सिंघानिया आयशा से कितना प्यार करती है, मैंने देखा जब उन्होंने मुस्कुराते हुए आयशा के गाल पर हाथ रखा, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है जो मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। ठीक है, वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पैदा होने की वजह से उनकी सब जगह बदनामी हुई थी, तो कम से कम लोगों के सामने मेरी इंसल्ट तो ना करें, अगर मेरे पैदा होने से उन्हें इतनी ही दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया। जैसे ही वो सब दिखना बंद हो गए, इशिका पलटने वाली थी तभी उसे वसुधा दिखाई दी। वसुधा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो औरत कौन थी, जानी पहचानी सी लग रही थी, पर तुम्हें पता है ना बीमारी की वजह से कुछ याद नहीं रहता।
इशिका उनकी बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी वसुधा ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, अरे हाँ याद आया, वो तुम्हारी माँ है ना, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, वो तुम्हारी माँ ही है। भाई, दादी को कुछ याद नहीं रहता लेकिन जब भी याद आता है वो बम फोड़ देती हैं, लगता है दादी को काफी कुछ पता है। अब तो इशिका को दवाई जल्दी से जल्दी बनाकर उन्हें ठीक करना होगा, उसकी आधी जिंदगी के राज तो दादी को ही पता होंगे। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।